फाइल 21 उपन्यास दिल एक सादा कागज अध्याय 9 जला है जिस्म जहां पृष्ठ 212 से। आदमी को ये भूलने में खासी देर लगती है कि वो एक अच्छा साहित्यकार है। काफी दिन तो ये फैसला करने में ही लग जाते हैं कि ये बात भूल जाई जाए या न भूली जाए। रफन भी इसी दोराहे पर था। साहित्य जरूरी है या घर का किराया, साहित्य का महत्व ज्यादा है या राशन कार्ड का, जिंदगी को एक खूबसूरत नज्म या एक उदास चौपाई ज्यादा खूबसूरत बनाती है, या कि पत्नी की एक आसूदा मुस्कुराहट, गालिब का दीवान या धोबी का हिसाब, लड़ाई या कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज पर जिंदगी और सैयद अली रफअत जैदी बागी आजमी के झगड़े में बीच बचाव कराने वाला था कौन। भाई जानू ढाके में है, जन्नत बाजी रफअत से मिलने लंदन गई हुई हैं, जैदी विला गाजीपुर में है, राम अवतार नारायणगंज में कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हो गया है, चंद्रशेखर जेल में है और जन्नत सामने बैठी चाय बना रही है। ये भी नहीं पूछ रही थी कि घर आने में इतनी देर क्यों हुई। रफन ने जो सिगरेट सुबह की चाय के लिए बचा रखी थी उसे वो जलानी पड़ी। थक गए होगे, जन्नत ने कहा, सो जाओ। उसने अपने आप में जन्नत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं पाई। वो जन्नत का ये राज भांप चुका था कि उसने सपने देखना छोड़ दिया है। रुपए के साथ साथ सपने भी सिकुड़ गए हैं। अब मनुष्य भविष्य के सपने नहीं देखता, वर्तमान के सपने देखता है। ये देखता है कि अरहर की दाल 2 रुपए किलो नहीं है बल्कि 4 रुपए किलो है। ये सोचने तक की हिम्मत नहीं पड़ती कि दाल रुपए की 20 किलो है या घी रुपए किलो है। बढ़ती हुई कीमतों ने आदमी को कितना यथार्थवादी बना दिया है। तेज चलने लगी गुर्बत में हवा, गर्द पड़ने लगी आईने पर, जागते रहने का हासिल क्या है, आओ सो जाओ मेरे सीने पर। ख्वाब तो दोस्त नहीं है कि बिगड़ जाएंगे, ख्वाब तो दोस्त नहीं है कि हमें धूप में देखेंगे तो कतराएंगे, ख्वाब तो दोस्त नहीं है कि जो बिछड़ेंगे तो याद आएंगे। जागते रहने का हासिल क्या है, अव्वले शब उसे देखा था जहां, चांद ठहरा है उसी जीने पर, आओ सो जाओ मेरे सीने पर। जन्नत ने उसके सीने में मुंह छुपा लिया। वो बंद आंखों से छत की तरफ देखता रहा और जागते हाथों से जन्नत को थपकाता रहा। आओ हम तुम चले नींद के गांव में, धुंध के शहर में सारी परछाइयां सो गईं, इस पसीने के गहरे समुंदर के साहिल पे टूटी हुई सारी अंगड़ाइयां सो गईं। सो गए क्या, जन्नत ने पूछा। नहीं, उसने जन्नत को बाहों में कस लिया। उसके बालों की महक अब भी बिल्कुल वैसी ही थी, नए नए खिले हुए फूलों की तरह। शोर कम हो गया, कह कहे सो गए, सिसकियां सो गईं, सारी सरगोशियां सो गईं। कहानी नहीं बिकी तो घबराते क्यों हो, जन्नत ने कहा, मैं घर का खर्चा और कम कर लूंगी। रास्ते चलते चलते घरों में समाते गए, शहर अकेला खड़ा रह गया। क्यों ना हम इस अकेले भटकते हुए शहर को साथ लेते चलें नींद के गांव में। जन्नो मैं तो थक गया यार, उसने कहा, सोचता हूँ। जन्नत ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। बात अधूरी रह गई। रात ढलने लगी, आंख जलने लगी, लफ्ज खुद अपनी आवाज के बोझ से दब गए। तुमने सरगोशियों की रिदा ओढ़ ली, आओ सरगोशियों ही को रखते सफर की तरह बांध लें, आओ हम तुम चलें नींद के गांव में, धुंध के शहर में सारी परछाइयां खो गईं। जन्नत उसके होठों पर अपने होठ रखे रखे सो गई थी और रफन अपने गालों पर उसके आंसुओं की नमी महसूस कर रहा था और जाग रहा था क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। एक चुटकी नींद की मिलती नहीं अपने जख्मों पर छिड़कने के लिए, हाय हम किस शहर में मारे गए। रफन ने बड़े एहतियात से जन्नत का सिर अपने सीने से उठाकर तकिए पर रख दिया। तकिए से उसका सीना बहुत दूर नहीं था, पर उसे लगा जैसे जन्नत बहुत दूर चली गई है और वो अपने बिस्तर के लंबे चौड़े रेगिस्तान में अकेला खड़ा अपनी परछाइयों को ढूंढ रहा है। जैदी विला, मिसेज नॉर्थ, अब्दुस समद खां, शरफुआ, मौलवी तकी, सैदानी बी, भाई जानू, जन्नत बाजी, नारायणगंज, रामअवतार, शेखर, शारदा, जिसने आज पहचानने से इनकार कर दिया। आज इनकार किया है या कल इनकार किया था? रात के जगमगाते हुए शहर में मेरी परछाइयां खो गई हैं कहीं। गैर है आसमां, अजनबी है जमी, मैं पुकारूं किसे, चल के जाऊं कहां। रात के जगमगाते हुए शहर में खो गई मेरी परछाइयां। रफन ने जन्नत की तरफ देखा, वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। आंसू की सूखी हुई लकीर गाल पर थी, पर वो खुश दिखाई दे रही थी। वो शायद कोई ख्वाब देख रही थी। जन्नत की तरफ देखते रहने की हिम्मत न पड़ी तो वो पलट कर अपनी पिछली जिंदगी की तरफ देखने लगा। आखिर मैंने क्या खोया है, आखिर मैंने क्या पाया है? खोया शायद सब कुछ है, पाया शायद कुछ भी नहीं है। और तब उसे एकाएक याद आया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। कौन सी सालगिरह है? पता नहीं बुरे दिनों के बरस कितने दिनों के होते हैं। उसने झुककर चुपके से जन्नत का मुंह चूम लिया। उसने आंखें खोल दीं, वो जाग रही थी। मुस्कुराकर उसने उसके गले में बाहें डाल दीं। जन्नत उस चुंबन की अनकही बेशब्दी जबान समझ गई थी। रफन ने जन्नत को अपनी बाहों में ले लिया। यार जन्नत, एक बात बताओ।
क्या बात?
जो कहानी मैंने उस हरामजादे को आज सुनाई थी वो खासी बुरी थी, पर इतनी बुरी नहीं थी कि वो सुनकर फड़क जाता। जन्नत ने कुछ नहीं कहा। मैं इससे भी ज्यादा खराब कहानी लिख सकता हूँ। जन्नत फिर भी कुछ नहीं बोली। अब तुम ये फैसला करो कि बुरी कहानियां लिखूं या तुम्हें तलाक दे दूं। मुझे तलाक दे दो। रफन ने जन्नत को भींच लिया। बिस्तर पर थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर नीचे सड़क से बसों, ट्रकों और दूध बेचने वाले भाइयों की आवाजें आने लगीं। रफन ने कहा, नहीं, मैं खराब कहानियां लिखूंगा। बिस्तर पर फिर सन्नाटा हो गया। जन्नत के रोने में यही तो कमाल था कि वो बे आवाज रोती थी। अरे हाँ, रफन को एक बात याद आ गई। कल खुलना से मेरे एक पुराने दोस्त का खत आया था। उसने लिखा है कि जन्नत बाजी भाई जानू को छोड़कर किसी ब्रिगेडियर रहमान नियाजी के साथ रहने लगी हैं और बाकी सब खैरियत है। बिस्तर पर फिर सन्नाटा हो गया। शहरबानों की क्या उम्र होगी? जन्नत ने पूछा। 22-23 बरस की हो रही होगी, रफन ने कहा। जन्नत बाजी भी 40-42 की तो होंगी ही। जिंदगी को दिन या बरस के गज से नहीं नापना चाहिए, रफन ने कहा। ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है। तो जिंदगी को तजर्बों के गज से नापना चाहिए। भाई जानू पाकिस्तान इसलिए गए थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की इज्जत आबरू महफूज नहीं थी और अब उनकी इज्जत आबरू ढाके में दुरूह पड़ रही है। इतनी कड़वाहट! जन्नत लरस गई। सुबह खिड़की की सलाखों पर गीले कपड़े की तरह पड़ी सूख रही थी। मैं 35 साल का एक बूढ़ा हूँ, उसने फिर वही डोर पकड़ ली। भाई जानू तो बच्चे हैं, मुश्किल से 4 साल के। पहला अनुभव, गुलबहरी और अनाज की कोठरी। दूसरा अनुभव, जन्नत बाजी या भाभी और दुल्हन का कमरा। तीसरा अनुभव, पाकिस्तान का सफर। चौथा अनुभव, जन्नत और ब्रिगेडियर नियाजी। भाई जानू तो शायद शहरबानों और रफत से भी छोटे हैं। कल शारदा से मुलाकात हो गई।
ऐ,
जन्नत चौंक पड़ी। शारदा, वो यहाँ क्या कर रही है? वो आजकल एक प्रोड्यूसर की बहन बनी हुई है। गोया की बहन बनना भी कोई काम है। क्या कालीचरण प्रोड्यूसर हो गया है?
नहीं।
तो फिर? मगर कालीचरण के सिवा तो उसका कोई भाई नहीं था।
था नहीं, कहने से क्या होता है।
मैंने अपनी आंखों से उसे किसी और की बहन देखा है। शहजादा तो उसे उसकी बहन समझ के ही ले गया है।
या अल्लाह, जन्नत समझ गई।
अल्लाह टल्लाह करने से कोई फायदा नहीं। आदमी तरक्की करना चाहता है। क्या वो जिंदगी भर कालीचरण की ही बहन बनी रहती? लूथरा साहब सफीर हो जाए, राम अवतार कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हो जाए, मक्खन लाल डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हो जाए और वो बेचारी केला तंबोली की 8वां पास बेटी से आगे ही ना बढ़े। देखती जाओ,
थोड़े दिनों में वो शहजादा कश्मीरी की बहन हो जाएगी। तुम्हें देखकर तो बहुत खुश हुई होगी।
बहुत,
क्या बोली? उसने पहचाना ही नहीं, रफन ने कहा। मुझे पहचानने से फायदा भी क्या, मैं एक पिटा हुआ मोहरा, एक उतरी हुई कमान, एक मैं कुछ नहीं हूँ। कालीचरण ने मेरी कहानी ठीक की। वैसे अब वो कालीचरण नहीं है, दिनेश ठाकुर मस्ताना हो गया है। पड़ोस की बालकनी से गिटार की आवाज आने लगी। लोबो बहुत बुरी गिटार बजाता था, गाता उससे भी ज्यादा बुरा था, पर अपने बारे में उसकी ये राय नहीं थी। पेड्रो रफन का नया पड़ोसी था। कंधों से नीचे तक आए हुए चमकीले काले बाल, बहुत बड़ी बड़ी काली आंखें, छरहरा बदन, लंबी नोकदार उंगलियां, थर्राई थर्राई सी आवाज। वो आते ही रफन पर आशिक हो गया था और उसका ख्याल था कि वो एंटी क्लासिकल म्यूजिक का बाबा आदम है। जन्नत पेड्रो की निगाहें ताड़ गई थी और रफन को अक्सर छेड़ा करती थी, इसीलिए गिटार की आवाज सुनते ही वो मुस्कुरा दी। वहां पेड्रो ने गाना शुरू कर दिया। यू कम टू मी इन ऑल माई ड्रीम्स, यू टच माई लिप्स और सो इट सीम्स, योर लव इज बट अ किस अवे, इफ ओनली आई कुड मेक यू स्टे, अ डाइंग लव इज वॉट वी शेयर। उसकी आवाज रफन की जेब में रखे हुए उस खत को छू रही थी जो खुलना पूर्वी पाकिस्तान से आया था और जिसमें एक पुराने दोस्त ने ये खबर दी थी कि जन्नत बाजी ब्रिगेडियर न्याजी के साथ भाग गई हैं। 23 बरस की शहरबानों की माँ जन्नत, उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था और बगल वाली बालकनी पर पेड्रो अब भी गा रहा था। यू कम टू मी इन ऑल माई ड्रीम्स, यू टच माई लिप्स और सो इट सीम्स।
मिस्टर पेड्रो,
जन्नत ने आवाज दी।
या
तुम हमारा साथ चाय पीना बिल्कुल छोड़ दिया
है।
हम मिस्टर रफट को डिस्टर्ब करने को नहीं चाहता है।
मिस्टर रफट को तो चाहता है ना।
ये क्या बेहूदगी है, रफन ने कहा। जन्नत खिलखिला के हंस पड़ी। जल्दी से चाय पिलवाओ, रफन ने कहा। मुझे उस प्रोड्यूसर के पास जाना है, उसे घर से निकलने के पहले पकड़ लिया तो साइनिंग अमाउंट के नाम पर कुछ खींच लाऊंगा। जन्नत हंसती हुई किचन की तरफ चली गई। रफन खुलना वाले खत को फिर पढ़ने लगा। खत लिखने वाले कमबख्त दोस्त की लिखावट इतनी अच्छी थी कि रफन ये भी नहीं सोच सकता था कि शायद उससे पढ़ने में गलती हो रही हो। भाई जानू क्या कर रहे होंगे। अभी पिछले हफ्ते उनका खत आया था कि शहरबानों के लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा लड़का पसंद किया है।
देखो रफन, तुम जो शहरबानों की शादी में ना आए तो हम और जन्नत दोनों ही तुमसे खफा हो जाएंगे।
खुदा ने चाहा तो शादी इंशाअल्लाह अगली जनवरी की 20 तारीख को होगी। तुम पासपोर्ट बनवाना शुरू कर दो।
अरे हाँ, यहाँ एक बोर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू बना है, उसमें मेरे कई लोग हैं। नूरुल आमीन साहब ने वादा किया है कि वो तुमको उसका पेड सेक्रेटरी बना देंगे। 1500 रुपए महीना तनख्वाह, फर्निश्ड बंगला, सरकारी कार, और क्या चाहिए। अपने को वहां सड़ाने से क्या फायदा। शहरबानो आदाब कह रही है। बाय द वे, ये शहरबानो तुम्हारी फैन है, यहाँ सबसे झगड़ती रहती है। अभी पिछले हफ्ते राइटर्स क्लब की एक मीटिंग में प्रोफेसर नफीस बेगम से लड़ गई। उन्होंने जदीद उर्दू शायरी पर एक पेपर पढ़ा, तुम्हारा जिक्र ही नहीं था। बस शहरबानो पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ गई। ये नफीस बेगम मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थीं। कहती हैं कि तुमसे यूं ही सरसरी सी मुलाकात भी है। इस खत में जन्नत के भागने के तो कोई आसार नहीं है, बस ये नई बात लिखी हुई है कि नफीस अब उसे सिर्फ सरसरी तौर पर यूं ही सा जानती है। उसने इस खत का जवाब फौरन दे दिया था। मैं शहरबानों की शादी में जरूर आऊंगा।
और भाई जानू, ये तो कमाल की बात हो गई कि नफीस बेगम मुझे सरसरी तौर पर जानती हैं। मैं तो उन्हें जानता ही नहीं। पाकिस्तान जाने के ख्याल से जन्नत बहुत खुश थी। उसकी कई सहेलियां पाकिस्तान में थीं, उसके अब्बा पाकिस्तान में थे। वो चाहती थी कि पाकिस्तान जाने से पहले उसके गहने छूट के आ जाएं, और इसीलिए रफन ने वो फटीचर कहानी लिखी थी जिस पर शारदा को एतराज हुआ था। सच्ची बात ये है कि शारदा रफन को देखकर हड़बड़ा गई थी। वो बड़ी मुश्किल से मझले प्रोड्यूसर की बहन बनी थी,
पब्लिसिटी मटेरियल तैयार हो रहा था। भैरवी राजा साहब नारायण गंज की भतीजी, भैरवी लखनऊ यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट, भैरवी खाना पकाना, पेंटिंग और खतों के जवाब देने की शौकीन, पहली बार 8 साल की उम्र में स्टेज पर आई, लिज टेलर और मीना कुमारी की फैन, 11 बरस की उम्र में शहजादा कश्मीरी पर आशिक हुई थी, उसका इश्क 7 बरस का होकर 18वें बरस में आ गया है। एक बार जब ये उड़ी थी कि शहजादा कश्मीरी ने एक इंडो आयरिश एयर होस्टेस से शादी कर ली है, तो ये 4 दिन तक रोती रही थी, तो इस भीड़ भाड़ में रफ्फन को भला कहाँ जगह मिल सकती थी। रफ्फन जिसको जाना करता था उसका नाम शारदा था, वो काली चरण की बहन थी, राम अवतार से प्यार किया करती थी, केवल मिडिल पास थी। पर जो लड़की शहजादा से फ्लर्ट कर रही थी उसका नाम भैरवी था, कालीचरण तो केवल उसका सेक्रेटरी था, बहन तो वो महेंद्र सिंह मजले प्रोड्यूसर की थी, राम अवतार कौन। शहजादा कश्मीरी के जुहू वाले शैक में पहुंचकर उसने पहला काम ये किया कि शहजादा को ये यकीन दिला दिया कि रफ्फन को लिखना नहीं आता। रफ्फन की तरफ से शहजादा कश्मीरी का दिल भी कोई खास साफ नहीं था, तो शहजादा ने उसी वक्त महेंद्र को फोन किया, पुत्र यार वो तुम्हारा राइटर साला तो बिल्कुल चूतिया है, तुम्हें मालूम था तो उसे बुलाया क्यों। अरे यार दुश्मन तो मैं उसका भी नहीं, पर धंधे में दोस्ती कैसी, चलिए बात खत्म हो गई। सुबह को जब रफ्फन मजले प्रोड्यूसर के घर पहुंचा तो उनका मूड खराब था, इसके बहुत पूछने पर वो बरस पड़े, ये साले स्टार लोग, महनचोदों को कोई स्टोरी सेंस तो है नहीं, पर टांग जरूर अड़ाएंगे। वहां से जाके फोन कर दिया कि चमन साहब का उपन्यास पर्वत ले लो, कश्मीर का आउटडोर भी निकल आएगा, भैरवी को ब्रेक देना है तो कायदे से दो। रफ्फन जी मेरी तो समझो हाथापाई होते होते रह गई, मैं साला जाहिल आदमी हूँ, पर साहब राइटर की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई बात नहीं महेंद्र जी, किसी और फिल्म में साथ काम करेंगे, नेक्स्ट फिल्म तो तुम्हारे साथ बने ही बने, चुन के कोई सब्जेक्ट निकालो कि बस समझ जाओ। हाँ कुछ सेक्स हो, दस्तक चेतना ने सारा एटमॉस्फेयर गंदा कर दिया है, हम तो भाई फैमिली सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मैं चलता हूँ, कुछ चाय शाय। नहीं वो जरा बीआर ने बुलवाया था, एक सब्जेक्ट उन्हें पसंद आया है, सब्जेक्ट तो ऐसा ही है पर बिगनिंग गजब की है, बरसात की रात है, मूसलाधार पानी पड़ रहा है, हीरो अपनी कार पर चला जा रहा है, हेडलाइट सामने पड़ती है, एक कार खड़ी है और कार के बाहर एक लड़की खड़ी भीग रही है, उसके कपड़े उसके बदन से चिपक गए हैं, हीरो गाड़ी रोकता है, धर्मेंद्र तो फ्लैट हो जाएगा इस रोल पर, कार में एक लाश है, वो खड़ा हो जाता है, अच्छा चलता हूँ। यार ऐसा ही कोई सब्जेक्ट अपने को सुनाओ ना, रात तो तुम ऐसे ही टरखा रहे थे। रफ्फन हंस पड़ा, बीआर 30,000 दे रहे हैं, मैंने कह दिया है कि 50 से कम नहीं लूंगा और 5,000 साइनिंग अमाउंट दो तो आगे सुनाऊंगा। बैठो तो यार, मझला बोला, हवा के घोड़े पर सवार हो, रात वाला सब्जेक्ट भी बनाएंगे, यश के अलग होने के बाद बीआर में कुछ नहीं रह गया है, दास्तान की रिपोर्ट बड़ी खराब है, शाम को मिलते हैं, रफ्फन ने कहा, 2-3 आइडियाज हैं। अरे असल चीज तो आइडिया ही है, फिर स्टोरी तो कोई भी बना सकता है, तो फिर शाम की तय रही, शिवास रीगल खोलेंगे। वो रफ्फन को दरवाजे तक छोड़ने आया और फिर तीर की तरह फोन की तरफ लपका और शहजादा कश्मीरी का नंबर डायल करने लगा। अरे शहजादा भाई गोली मारो साले चमन जी को, एक आइडिया सुनो, बरसात की रात है, साला इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, हीरो गाड़ी चला रहा है, हेडलाइट सामने पड़ती है, सुनसान सड़क पर दूर हीरोइन अपनी कार के पास खड़ी है, हीरोइन पर जुर्म किया है, जीन पहने हुए है, शर्ट के अंदर ब्रेजियर भी नहीं है, साला कपड़ा उसके बदन से चिपक गया है, साली ऑलमोस्ट न्यूड है, सेंसर बोर्ड वाले भी क्या उखाड़ लेंगे, पानी बरसेगा तो कपड़ा बदन से जरूर चिपकेगा, उसकी कार में एक डेड बॉडी है, साली धांसू ओपनिंग है कि नहीं। अरे हम कहां के राइटर, रात को आपके जाने के बाद एकदम से ये आइडिया बस आ ही गया दिमाग में। नहीं जी रजिस्टर करवा लेते हैं, राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर तो हम भी हैं।
बात पक्की हो गई। महेंद्र जी दरअसल हीरो बनने बंबई आए थे, बदन और अक्ल के मोटे, सातवां फेल, पर उनके परदादा फारसी के बड़े अच्छे शायर हुआ करते थे, मफ्तू तखल्लुस था। सारे मुकैरिया में उनकी शायरी की तूती बोला करती थी। अब यदि दादा फारसी का शायर हो तो क्या पोता फिल्म राइटर्स एसोसिएशन का मेंबर भी नहीं हो सकता? अरे साहित्य तो उनकी घुट्टी में था। वैसे महेंद्र जी अपने आप को रावलपिंडी का बताया करते थे, पंजाबी होने से फायदा क्या यदि वो रिफ्यूजी भी ना हो। 47 के दंगों की बात करते ही आंखों में आंसू भर लाते दिलनवाज खां, सरवर खां, गुलाम नबी खां और बचपन के न जाने कितने यार दोस्तों की कहानियां सुनाते, बताते कि किस तरह अपनी जान पर खेलकर सरवर खां ने उनकी बहनों की आबरू और खुद उनकी जान बचाई थी। शुरू शुरू में जब उन्हें कोई नहीं जानता था तब तो उनके घर के तमाम लोग रावलपिंडी में बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए थे, पर उन्हें बहुत जल्दी पता चल गया कि फिल्मी दुनिया में ये चक्कर नहीं चल सकता, तो वो सेक्युलर हो गए और मुसलमान दोस्तों ने उनकी जान और आबरू बचाई। भिंडी बाजार के लोगों का बस चलता तो महेंद्र जी के नाम के आगे रहमतुल्लाह या राही अल्लाह जरूर जोड़ देते। उन्हें राइटर बनने का कोई खास शौक नहीं था, पर जब उनकी पहली फिल्म जिंदगी की प्यास का ट्रायल शो हुआ तो लोगों ने स्क्रिप्ट की बड़ी तारीफ की। सबकी राय थी कि इस फिल्म की जान तो स्क्रिप्ट है, जैसे कोई ऐसी फिल्म भी बन सकती है जिसकी जान स्क्रिप्ट न हो। राइटर की तारीफें सुनकर महेंद्र जी चकरा गए, कमाल है, फाइनेंसर की खुशामत करें वो, सूद भरे वो, हीरोइन के कुत्ते के सर पर हाथ फेर फेर कर उसकी तारीफ करें वो, हीरो से 2 मिनट मिलने के लिए उसके ड्राइंग रूम में सवेरे से शाम तक बैठे रहें वो, हीरोइन की छोटी बहन को हीरोइन बनाने का वादा करें वो, हीरो की सालगिरह पर पैसा खर्च करें वो, और क्रेडिट ले जाए साला राइटर। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कह दिया कि ये फिल्म खुद उन्होंने लिखी है। हीरो का ख्याल था कि ये फिल्म उसने लिखी है। डायरेक्टर ने कई पार्टियों में कहा कि उसे इस स्क्रिप्ट पर बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तय ये हुआ कि स्टोरी आइडिया का क्रेडिट हीरो को दिया जाए, स्क्रीन प्ले का क्रेडिट आया डायरेक्टर के हाथ और डायलॉग लिखे श्रीमती महेंद्र जी ने। उस फिल्म के लेखक बाबू चंद्रिका प्रसाद से किसी ने पूछा ही नहीं कि इस मामले में उनकी क्या राय है।